فوقاه اللہ سیئات ما مکرو، پس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے۔ کون سا عذاب تھا یہ؟ دوزخ کی آگ پیش کیا جاتا ہے ان کو اس پر غدوا وعشیہ، صبح اور شام۔ اور ویوم تقوم الساعۃ، اور جس روز قائم ہوگی قیامت، حکم کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ اب داخل کر دو فرعون کو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں۔ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کون سا عذاب ہے جو فرعونیوں کو دیا جا رہا ہے؟ عذاب قبر کی دلیل ہے۔ یاد، جو لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں سے اس کی دلیل دکھائیں، ان کو یاد دکھا دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے اور اس کے گروہوں لشکروں کے ڈوبنے کی بات کی۔ یہ اس بندے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ شخص تو برملا دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو دعویٰ دے رہا ہے، کہا کہ اس کو مروا دو۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے اپنا معاملہ کیا اور کہنے لگا کہ جو بھی تم کرو گے میں کروں گا۔ پہاڑوں کی طرف نکلا، پہاڑوں نے اس کو پناہ دے دی، اور فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا دوسروں کی برائیوں سے؟ بالکل بچا سکتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ پہ معاملے ڈال کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کل اگر آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی نا کفار کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے، آج بھی اللہ ایمان والوں کو بچا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو النار یورعدون اردہ سے ہے، آگ پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ یہ ابن ابی حاتم کی اور عبد الرزاق اور مصری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عمر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے، اور یہ مقام دکھلا کر اس کو روزانہ کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت اس کو دکھلایا جائے گا، اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم اس کو دکھلایا جائے گا۔ تو لہٰذا النار یوردون علیہا، اس آیت کو عذاب قبر کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو نہیں مانتے وہ ویسے یہ دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جو نہیں مان رہے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی دلیل کی بنیاد پہ نہیں مانتے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی تکبندی کر لیں گے۔ تو یہاں عالم برزخ کے عذاب کی بات ہے۔ فرعونیوں کی کچھ عادات کیا تھی؟ کہ جب ان کا کوئی مرتا تھا نا تو وہ اپنی ساری دولت اپنے ساتھ لے کے مرتے۔ اسی طرح فرعون اپنی پسندیدہ بیویوں کو اپنے ساتھ دفن کراتے، اپنی لونڈیوں کو کراتے، پھر جن کا گھر کا سارا ساز و سامان ہوتا تھا نا وہ جمع کر کے ایک قبر بنتی۔ یہ جو پیرامڈ ہے نا، اپنے تصویروں میں دیکھے ہوں گے، ایجپٹ کے بہت بڑے ہوتے ہیں، اتنے اس ہال سے بھی بڑے ہوں گے، تو اس کے اندر پورے ان کے گھروں کا سامان ہوتا تھا۔ اچھا، جب سارے گھر کا سامان کر لیتے تھے نا تو ساتھ کشتی بھی ایک دفن کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ ان کا ایک اپنا مت بن چکا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد میت کو کوئی سمندر پار کرنے پڑتے ہیں، تو اندر کشتیاں لے کے جاتے تھے کہ پھر وہ سمندر کشتی پہ پار کرے۔ سامان اس سوچ سے رکھتے تھے کہ جب وہاں جائیں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی۔ من پسند بیویاں، اپنی لونڈیاں، اپنے پسندیدہ غلام، ان سب کو ایک جگہ دفن کراتے تھے کہ جب ہم اگلی جگہ پہ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ ہوا کیا؟ آج ممیز تو میوزیمز کی شان بن گئی، لوگوں کے لیے ڈالرز بن گئے، دکھا دکھا کے لوگ ٹورسٹوں سے پیسے لو، اور سونا چاندی کشتیاں گھر سارے چور لوٹ گئے۔ کس بات کی سزا تھی؟ کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدہ رکھا۔ یاد رکھیے کہ جب لوگ آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدے بنا لیتے ہیں نا تو ہمیشہ عمل میں کمی آتی ہے۔ جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں فلاں بچا لے گا، فلاں کی سفارش، فلاں کی بات، کون نے کیا کرے اتنی، ہاں؟ تو انہوں نے اعمال جمع کرنے کی بجائے سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس کی جگہ اعمال جمع کیے ہوتے کوئی چوری کر سکتا تھا؟ بس آپ دیکھیے کہ میں آپ اپنے پیچھے اگر اپنی قبر میں اتنا مال بھی چھوڑ دوں یا اپنے پیچھے چھوڑ دوں، آج اگر اس کو اپنے حال پہ ہم دیکھیں तो हम अपनी ज़िंदगी में कितना माल असबाब रखते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, चोरी हो गया ना, हमारे यहाँ से तो गया ना, चाहे बाद में कोई उसका इस्तेमाल करे ना करे। इसकी जगह अगर हमने अपने उस माल से आमाल खरीदे होते, लिखिए ज़रा यह जुमला, माल से आमाल जमा करने हैं, क्या लगेगा उसके अंदर, अलिफ और आइन लगा लें बस, तो माल आमाल में बदल जाएगा। अच्छे हाल में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा अमल है, और बुरे हाल में इस्तेमाल करेंगे तो बुरा अमल है। कोई चोरी कर सकता है हमारे अमाल को? कभी आपने सुना फलां की नेकियां चोरी हो गई, फलां के गुनाह चोरी हो गए? कुछ नहीं चोरी होता। तो जब लोग अकीदे आखरत के मामले में सही रब्बानी मसलक पे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल आमाल की फ़िक्र करते हैं, वो मताल हयात दुनिया के पीछे नहीं भागते, वो हक का साथ देने की बजाय सिर्फ नामों का साथ नहीं दे रहे होते हैं। और इसका ऑपोजिट जो है वो वही है जो शेत फिरौन के साथ हुआ, और अल्लाह ताला ने उसको आग में डाला। आज भी आप देखिए कि ये सब हो रहा है, कितने सौ साल हो गए, कितनी सदियां हो गई फिरौन को डूबे और मरे हुए, लेकिन आज तक ये हो रहा है। और जब क़यामत कायम होगी फिर कहा जाएगा अदखिलु आला फिरौन अशद अल अज़ाब। अब ये अज़ाब जो है ना, ये जहन्नुम का अज़ाब है। फिर एक और अजीब बात देखिए कि फिरौन डूबा तो पानी में था, और यहाँ आग की बात है। पता क्या चला कि कब्र वो कब्र नहीं होती जो हमें दिखती है। बाज़ लोग कहते हैं कि बाज़ लोग प्लेन के क्रैश में मारे जाते हैं, तो उनकी तो लाश बिखर गई, अब उसको क्या किया जाए। तो वहाँ वो मारूफ सही रिवायत याद कर लीजिए कि एक शख्स था, उसने अपने मरने से पहले वसीयत की कि मुझे मरने के मार जब मैं मरूंगा तो मुझे जला के मेरी राख को हवाओं में बखेर देना। लोगों ने ऐसे ही कर दिया। अल्लाह ताला ने हवाओं को हुक्म दिया कि उसके सारे जर्रात को जमा करो, सब जमा हुए तो फरिश्ते को कहा इसमें रूह फूको, जिंदा कर दिया। कहा कि तुझे ये काम करने का किसने कहा? वो मुसलमान शख्स था। कहने लगा अल्लाह सिर्फ इस खौफ से मैंने ये कहा कि मेरा जिस्म रहेगा कुछ रहेगा तो तू मुझे अजाब देगा, तो मैंने अपने आप को ख़त्म करना चाहा। कहा वाकई ये बात थी, इतना खौफ था मेरा, तो जा तुझे माफ़ कर दिया। सरासर काफिराना अमल किया लेकिन अल्लाह ने बचा दिया। तो क्या अल्लाह राख को नहीं जमा कर सकता? उसके लिए क्या मुश्किल है? पत्तों को जमा करता है, हर पौधे को पता है पिछले साल इस पे कौन सा पत्ता लगा था, इस साल वही लगना है, किस रंग के फूल लगे थे उसी के लगेंगे, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। तो लिहाजा कोई डूब के भी मर जाए, अजाब जो होता है ना ये हमारी रूहों को होता है। ये जब मैं कहती ना कि मैं आई एम, ये क्या है बता? ये जिस्म नहीं है, ये मेरी रूह बोल रही है। जब इंसान मरता है ना तो जो रूह को अजाब होता है ना, जिस्म से उसका ताल्लुक टूट जाता है। थोड़ी देर के लिए जिस्म में कब्र में रूह डाली जाती है इंसान के जिस्म में, लेकिन जो भी सवाब अजाब फ़ायदा खराबी ना, वो सारी जो है वो हमारी रूहों के साथ हो रही होती है। इसको आप इस तरह समझ लें, कब्र के अजाब को सिर्फ समझने के लिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये गैब का मामला है, लेकिन हमारा ईमान है कि कब्र का अजाब होता है और बरज़ख के अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। तो आप इसको ऐसे समझें जैसे आप कोई बहुत गहरा ख्वाब देखें। कभी आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? सांप चिपटे हुए हैं आपको, या आग पे हैं, या एक्सीडेंट हो रहा है, या लड़ाई हो रही है, उस वक्त आपको लग रहा होता है कि आप ख्वाब में? आपको ही लग रहा होता है ना। ये लग पाते हैं जब आँख खुलती है तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब था, वरना ख्वाब में देखा गया बाज़ लोग चीख रहे होते हैं, बाज़ पसीने छूटते हैं, बाज़ लोग उठ जाते हैं, साथ सोए बंदे को उसके मुंह में से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो जिस तरह उसको नहीं आता ना, तो अब इस डरावने ख्वाब को कई गुना ज़्यादा कर लें तो ये है अज़ाबे कब्र। उस वक्त उनको फीलिंग यही आ रही होती है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। और अब आगे जब जहन्नम में जाएंगे तो वहाँ क्या है, आप कह लें जहन्नम और लड़ाई साथ साथ। जहाँ जहन्नम का जिक्र पढ़ते हैं आपको लोग लड़ते भिड़ते मरते हुए दिखते हैं। वही शता हा जू न फिन्नार, देखो वो मंजर कैसा होगा जब बाहम झगड़ेंगे दोजख में। कौन किससे क्या कहेगा? फ़यकुलु दुआफ़ा लिल्लज़ीना इस्तकबरू, बस कहेंगे कमज़ोर लोग इन्हें जो तकबर किया करते थे। अब आप देख लीजिए कि फॉलोअर्स अपने लीडर्स को कहेंगे, वो लीडर कोई भी हो सकता है जिसने इंसानों को सबील रशाद के धोखे में सबील गई पे डाल दिया था। क्या कहेंगे अपने लीडरों से? इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, हम तो तुम्हारे ताबे थे। तबअन ताबे उन से है, हम तो भी तुम्हारे पीछे चलते थे, जो तुम करते थे हम कर लेते थे, जो तुम कहते थे वो हम कह देते थे। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, बस क्या तुम दूर कर सकते हो आज अज़ाब आग का कुछ, आज कुछ हिस्सा आग के अज़ाब का? यानी आज कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा, तुम्हारी बातें मानी, हम तुम्हारे फतवों पे चलते थे, तुम्हारी पढ़ी लिखी हुई किताबें पढ़ते थे, तुम्हारी तफसीरें सुनते थे, जो तुमने हमें कहा हम तो आंखें बंद करके चल रहे थे, क्योंकि हमारी तो अपनी कोई सोच नहीं थी। अब बताओ क्या तुम हमें कुछ फ़ायदा दे सकते हो? क्या कहेंगे वो? क़ालल्लज़ी नस्तकबरू, और कहेंगे वो लोग जो तकबर करते थे, यानी मुतकबरीन कहेंगे कैसे बचाएं भाई तुमको, इन्ना कुल्लुन फीहा, हम सारे ही आग में भुन रहे हैं। जब खुद निकले तो निकाले, ऐसे ही सोचें जैसे कोई कुएं में गिरा हुआ शख्स मौजूद है अंदर ही, उसको जाके लोग कहें कि तुम हमें कुएं से निकालोगे, तो वो कहेगा कैसे निकालो, मैं तो खुद नीचे गिरा हुआ, ऊपर होता तो कुछ करता। और साथ ही इस बात का फैसला कर देंगे, इन अल्लाह कद हकम बैन अल इबाद, बेशक अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया है बंदों के मुतल्लिक। क्या क्या आगे ठिकाना है? कोई इस जुमले में समझने वाली बात है? आज दुनिया में जिसके भी पीछे आंखें बंद करके इंसान चले, वो सोच के चले। कल मैं एक आज हमारा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है ऑनलाइन पे, तो उसकी तैयारी कर रही थी, सीरत के मौजू पे मैं तैयारी कर रही थी, तो एक किताब मैंने काफ़ी दिन से देखती थी, तो मैंने कहा जिसको खोल के देखती हूँ। इतनी मोटा है उसकी, यानी मोटी किताब थी, आधी किताब जो थी सीरत की किताब थी, हालांकि सीरत आप लोग ये कहते हैं किसी से भी पढ़ लें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग कि ये इसमें तो कोई मसला की बात नहीं, चलो स्टोरीज़ हैं। इतनी मोटी किताब उन्होंने मिलाद नबी सल्लम की का मिलाद मनाने के दलाइल में दी हुई थी, और पीछे से कहानी क्या चल रही थी, नबी सल्लम पे की पैदाइश, दो चार जुमले स्टोरी के बयान करके उस किताब में इतने पेज। और जब मैं रिवायतें पढ़ रही थी, मेरा मेरा जहन उसकी वजह से इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब है, तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो अल्लाह ने चार समझ दी है, थोड़ी बहुत मैं बात समझ लूँगी, जिन जहाँ ये किताब आप खोल के पेज को देखें, हज़ारों में छपती है किताब, सीधे साधे लोग पढ़ेंगे। इतनी मनगढ़ंत बातें, अल्लाह के नबी ने अपना मिलाद मनाया, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतने साल माशाल्लाह हो गए हैं दीन के साथ जुड़े हुए, इल्म का सफ़र चलते हुए, मैंने नहीं आज तक वो बातें सुनी जो अल्लाह के नबी की पैदाइश के मौके पर उस किताब पर लिखी हुई हैं। अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, सितारे नीचे आ गए, फरिश्तों ने आके बीबी आमना के घर का घेरा किया, रोशनी हुई, दरख्त झुके नीचे, इतनी लफाजी 30 अबाउट 25 से 30 किस्म के उन्होंने बातें लिखी थी कि विलादत नबवी के मौके पे जो कुछ हुआ, आसमान के सितारे नीचे आए, अल्लाह ने सितारों का चिरागा मस्जिद में किया, बैतुल्ला में चिरागा किया गया। मैं सोच रही थी ऐसी बातें पढ़ के किसका दिल नहीं चाहेगा ये कुछ करने को, मेरा दिल करने चाहता सच्ची बताऊं। वजह क्या है कि जो वो कहते थे हम करते थे, हमारे पास कोई क्राइटेरियन तो था ही नहीं, और हम हर कुरान की आयतें, यानी हज़रत ईसा की जो आयतें आप पढ़ चुके हैं, हज़रत यहया और ईसा की, कि वो अपने बारे में सूरह मरियम की आयतें हैं कि उन्होंने कहा कि सलाम उनला, मेरे पे सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाऊंगा, ये आपको आयत याद आएगी, तो कहते हैं देखो ये हज़रत यहया जो हैं ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हज़रत नबी सल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, ताला बदरु अलैना का जुमला सबने सुना हुआ, प्यार और मोहब्बत की बात थी, कहते देखो ये लड़कियां खड़ी होकर नाते पढ़ रही थी, मिलाद मना रहे थे नबी का, अल्लाह के नबी ने खुद मनाया, कभी हवाले के लिए ज़रूरत पड़ी तो ला के आपको उसकी रेफरेंस के साथ सुना दूंगी। तो बात क्या है, हम तो भाई तुम्हारे पीछे थे, अब बता दो हम क्या करें, दोनों ही उधर पड़े हैं, अल्लाह सबको हिदायत है, तड़प के दिल की गहराइयों से दुआएं करें ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह उनको ऐसी मुश्किलात से निजात दे। वक़ाल अल्लज़ीन फ़िन्नार, वक़ाल अल्लज़ीन फ़िन्नार लि ख़ज़नति जहन्नम। अब देखेंगे कि बड़े लीडर तो काम नहीं आ रहे, और सच्ची बात है कि उन बेचारों की तो यहाँ चल ही नहीं पा रही, तो कहते हैं चलो फिर जहन्नम के चौकीदारों के पास जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, किसी जगह से निकलने की कोशिश करें तो फिर आखिर वहाँ के जो गार्ड मैन जब की मैन होता है उसके पास जाते हैं। तो ये ख़ज़नत ख़ाज़िन की जमा, पीछे ये लफ्ज़ अभी गुजर चुका है, कि जहन्नुम के दारोगाओं के पास जाएंगे, 19 हैं ये, हमें 29 में पारे की आयत से मिलता है। क्या कहेंगे? उदउ रब्बकुम, पुकारो अपने रब को, हमारा नहीं तुम्हारा, नोट कीजिएगा कि जहन्नुम में वो लोग जाएंगे जो रब को अपना नहीं कहते, ये भी एक उनके जहन्नुम में जाने की दलील है, क्योंकि बास लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ दूसरों की बातें बोलते हैं, जो वो कहते हैं जी हमें क्या पता, हमारी तुम्हारे आगे, तुम्हारी रब के आगे। तो जब अपना रब से कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो जाके फरिश्तों को भी आदतन यही कह रहे हैं कि अपने रब को पुकारो, ये कहने के बजाय कि उद्ऊ रब्बना। और सच्ची बात है, ज़िंदगी में दुआएं भी खुद कहाँ की थी, मौलवियों से करवाते रहते थे, इसलिए यहाँ जाके उनसे ही दुआएं करवाने लग गए। कहने लगे, पुकारो अपने रब को, युखफ्फिफ अन्ना यौम मिन अल अज़ाब, एक दिन तो हमारे अज़ाब में कुछ कमी फरमा दे। ओनली वन डे, वी नीड वन डे वेकेशन, हम एक दिन की छुट्टी चाहते हैं, जल जल के थक चुके हैं। आप सोचिए ज़रा, कंटिन्यूस अजाब है वहाँ, तो यहाँ कंटिन्यूस काम क्यों ना हो? बताइए, क्या यहाँ छुट्टियों की ज़रूरत है एक ईमान वाले को? जहन्नुम में तो एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला अजाब है, कहेंगे सिर्फ एक दिन कम कर दे टेम्परेचर, मिन्नत समाजत। मैंने इस जुमले को जब पढ़ा तो मेरे जहन में एक तस्वीर आ गई, एक बीमार थे, बड़ी तकलीफ़ थी उनको, दर्द तकलीफ़ बीमारी। तो बाज़ दफ़ा क्या होता था कि फिर दर्द से बचाने के लिए डॉक्टर उनको इंजेक्शन देते थे सोने का, जब दर्द इतनी होती थी तो उसे नींद भी नहीं आती। तो मेरी आंखों के सामने वो मंज़र आता है कि वो कहते थे, खुदा के लिए डॉक्टर से कोक इंजेक्शन लगा दे, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ी देर सो जाए इंसान, थोड़ी सी अपने आप को ताजगी में ले आए। जहन्नमी कहेंगे सिर्फ एक दिन का अजाब। कालू अवलम तकुतातीकुम रुसुलुकुम बिल बैशिनात, दारोगे जहन्नम जवाब देंगे, क्या नहीं आया करते थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल रोशन दलीलों के साथ? कल रसूल थे, आज रसूलों की बात पहुंचाने वाले, क्या नहीं आते थे? कालू बला, कहेंगे क्यों नहीं आते थे, फिर क्या हुआ? कालू फदऊ, फिर दारोगे कहेंगे तुम खुद ही मांगो, खुद पुकारो, हम क्यों पुकारे? वमा दुआ उल काफिरीन इल्ला फी दलाल, और ऐसे लगता है कि फरिश्तों की पुकार पे, कहने पे वो मांगेंगे कि अल्लाह तू हमारा हाल सही कर दे या जहन्नुम से दूर कर, लेकिन जवाब क्या मिलेगा कि कुफार की दुआ महज गुमराही, बेसूद बेमकसद चीज़ के सिवा और कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि कुफर के साथ अल्लाह ताला अमल कबूल नहीं करता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला मैदाने महशर में लाके खड़ा करता है। यहाँ तक चंद आयतों की तिलावत सुनते हैं और ख़ुद को पूछेंगे कि क्या हम क़यामत के दिन के इन अजाबों को सामने रख कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस दुनिया में जीना और यहाँ से जाना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं। सारी आयतों को अगर आप एक जुमले में, एक सेंटेंस में पाइल अप कर लें, तो बात यही है कि जो जैसा जिएगा वैसा ही जाएगा। जो यहाँ पे करेगा ना, वो वहाँ उसी रिजर्वेशन की बेस पे पहुँचेगा। कब्र को भी आप अगर इमेजिनेशन में ले आएँ, तो एक वेटिंग लाउंज है जो किसी बहुत थर्ड क्लास किस्म की ट्रेन के स्टॉप पे हो, और जन्नत को वेटिंग रूम बना ले जो VVIP और क्या क्लब की फलां की मेंबरशिप के बाद लोगों को पेश किया जाता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدخلون أتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسل وما